وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج والعمرة لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اپنے کرم اور احسان سے ایک مرتبہ پھر وہ دن عطا فرمایا کہ جب ہم محبوب حقیقی کے اس گھر کے قریب موجود ہیں. یہ فقط اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے. اس گھر کی حاضری اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اموال کی وجہ سے نہیں ہوتی. اگر مال کے ذریعے ہوتی تو دنیا کے مالدار لوگ زیادہ سے زیادہ حجیں اور عمرے کرتے، جبکہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اتنا کچھ دیا کہ اگر وہ چاہیں تو روزانہ اپنے ذاتی طیارے پر احرام باندھ کر اس جگہ آ کر عمرہ کر کے واپس جا سکتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو کئی مرتبہ زندگی میں ایک دفعہ بھی توفیق نصیب نہیں ہوتی. کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مال بھی بہت ہے، مگر توفیق عمل نہیں. یہ توفیق عمل اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جن کے پاس عمرے کا پورا زادرہ موجود نہیں تھا، کچھ پیسے اکٹھے کیے، کچھ قرض لیے، کچھ جمع کیے، اللہ نے سبیل بنا دی، آج موقع مل گیا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں کی حاضری اللہ رب العزت کے کرم اور اس کے فضل ہی سے ہو سکتی ہے، اور یہ اس کا فضل اور احسان کہ اس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا. جتنا اس کا احسان مانے اتنا کم ہے. اس سفر میں تین باتیں نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلی بے صبری. کئی مرتبہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے صبرا ہو جاتا ہے. وقت پہ پانی نہ ملا ٹھنڈا، وقت پہ کھانا نہ ملا، بس میں بیٹھتے ہوئے اچھی سیٹ نہ ملی، کوئی اور چیز خلاف طبیعت ہو گئی تو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. یہ چیز انسان کے سفر کے اجر کو کم کر دیتی ہے. کبھی بھی بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں. آپ سوچیں کہ بالفرض جب اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت ہوئی تھی عمرے کے سفر کی، اس وقت اگر کوئی ہمیں یہ کہتا کہ بھائی عمرے کے سفر کی اپروول دینی ہے، مشقتیں آئیں گی، برداشت کرو گے تو دے دیتے ہیں، نہیں کرتے تو نہیں دیتے، تو हम उस वक्त ये कहने को तैयार होते हैं कि अल्लाह उल्टा लटक के भी अगर वहां हम पहुंच सकें तो आप हमें अप्रूवल दे दीजिए, प्लीज आप मेहरबानी कर दीजिए। उस वक्त हमारी ये हालत होती। और ये भी देखो अल्लाह का कितना करम है कि अगर वो मालिकुल मुल्क ये कानून बना देता कि मेरे दरबार में हाजिरी के लिए तुम्हें आग के एक दरिया में से गुजर के आना पड़ेगा, वो कानून बना सकता था। उसने बनी इसराइल के लिए कानून बना दिया कि तुम्हारी तौबा तब कबूल करेंगे, फक्तुलु अनफुसकुम, हम अंधेरा कर देंगे, तुम अपने आप को छुरिया मारो, खून निकाल के दिखाओ। तो बनी इसराइल के लिए कानून बन गया, कुरान इस पर गवाही दे रहा है। वो मालिकुल मुल्क इस वक्त का इख्तियार रखता है, मगर उसने तो सिर्फ इतना कह दिया, हाँ एहराम बांधने के लिए बस पानी से गुसल कर लो, मगर नियत करो कि तुम आज के बाद नफरमानी नहीं करोगे, हम तुम्हारे इसी गुसल को ही कबूल कर लेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, ये कितना अल्लाह का करम और एहसान है कि जिसने अपने दरबार में हाजिरी इतनी आसान बना दी। तो एक तो बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना, वरना तबीयतें होती हैं ना, जरा जरा सी बात पे झंझनाहट होती है, ये क्यों है, ये क्यों है। और अजीब इम्तहान ये है कि आज के दौर में चूंकि तन आसानी का दौर है और मन मानी का दौर है, शैतान ने एक नई टर्म निकाल दी है, वीआईपी उम्रा। हम तो जी वीआईपी उम्रा करेंगे, हम तो वीआईपी हज करेंगे। या अल्लाह, एक नौकर, एक गुलाम अपने मालिकुल मुल्क के दरबार में हाजिर होना चाहे और ये तमन्ना रखे कि वीआईपी तरीके से जाऊंगा, अल्लाह अकबर कबीरा। ये लफ्ज लेना ही मेरी नजर में खता है कि अल्लाह के दरबार में हाजिरी और तमन्ना रखे वीआईपी नहीं। कहते हैं ना कि मालिक इब्न दिनार रहमतुल्लाह अलैह गर्मी के मौसम में दोपहर के वक्त घर से निकले, चिलचिलाती धूप थी, तो देखते क्या है कि एक नौजवान है जो टांगों से माजूर है और अपनी सुरीनों के बल बैठा हुआ घिसकता हुआ चल रहा है। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि चेहरा सुर्ख है उसका, पसीने में शराबूर। जब करीब से गुजरे तो सलाम दुआ हुई, तो मालिक अपने दीनार से पूछा कि नौजवान कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि बैतुल्ला की ज्यारत का इरादा है। कहने लगे कि भाई दोपहर का वक्त है और इतनी सख्त गर्मी है, तुम मेरे यहाँ थोड़ी देर रुक जाओ, जब सूरज गुरूब होगा या धूप ठंडी हो जाएगी तो फिर चले जाना। उसने कहा मालिक अब्द दीनार, आप तो टांगों से सफर करते हैं और मैं तो घिसट घिसट के सफर करता हूँ, मुझे डर इस बात का है कि अगर मैं कहीं रुक गया तो ऐसा ना हो कि इधर से अय्याम हज आ जाएं और मैं अभी रास्ते में हूँ, मैं रुकना नहीं चाहता। तो मालिक इब्न दीनार ने जवाब में कहा कि अच्छा, हम तुम्हारे लिए सवारी का बंदोबस्त कर देते हैं, तुम सवारी पे सवार हो के जरा तेज सफर कर लेना। जैसे ही ये बात की तो उस नौजवान ने जरा गुस्से की निगाह से देखा मालिक इब्न दीनार, मैं तो आपको बड़ा अकलमंद समझता था, ये आपने कैसे बात कर दी? पूछा क्यों? कहने लगा कि मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई गुलाम अपने आका को नाराज कर बैठे और फिर इरादा करे कि मैं अपने मालिक को जाकर मनाऊं, तो ये बताओ कि उस गुलाम को ये बात जेब देती है कि सवारी पे सवार होकर जाए या ये अच्छा है कि वो घिसट घिसट के मालिक के सामने हाजिर हो जाए। अल्लाह अकबर। हमारे उन अकाबिर का ये हाल था, और वाकई अल्लाह ताला यही चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरे सामने ऐसी आजजी के साथ आए। और इसकी दलील कुरान अजीमुशान में से अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मेरे इस दरबार में हाजिरी का कानून उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खौइफी, उनको चाहिए था कि मेरे घर में दाखिल होते मगर उनके दिल मेरे खौफ से सहमे हुए होते हैं। बड़े के दरबार में जाए ना तो दिल पे एक रोब होता है, अल्लाह ताला भी यही चाहते हैं कि ये मेरे दरबार में आए तो इनके दिलों पे मेरी अजमत हो, मेरा रोब हो। किस मालिक के दरबार? अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में कदम रखते थे तो रंग पीला होता था। किसी ने पूछा कि हजरत बड़े बड़े मार्कों में आप नहीं घबराते मस्जिद में दाखिल होते? फरमाया तुम्हें पता है किस मालिकुल मुल्क के दरबार में मैं दाखिल हो रहा हूँ। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में दाखिल होने लगे तो बायां पांव अंदर रख दिया, आवाज आई या सौर ओ बैल, गश खा के गिर गए। फिर ये लफ्ज इतना अच्छा लगा कि पूरी जिंदगी इसी नाम के साथ गुजार दी और अपने आप को सुफियान सौरी कहलवाया करते थे। और हम कई दफा मस्जिद में दाखिल होते हैं, हमें एहसास ही नहीं होता कि दायां कदम रखा या बायां कदम रखा। हमारे दिल दुनिया के मामलात में ऐसे फंसे होते हैं कि मस्जिद में दाखिल होकर एतिकाफ करने का पता ही याद ही नहीं होता। तो इसलिए ये वीआईपी का जो लफ्ज है ये इस दरबार के लिए काबिल कबूल नहीं है। यहाँ तो अल्लाह के महबूब भी आए, इलाही अब्दुक वबनु अब्दिक वबनु अमतिक, अल्लाह तेरा बंदा, तेरे बंदे का बेटा, तेरी बंदी का बेटा। कितने आजजी भरी अल्फाज से अल्लाह के महबूब सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन अल्लाह के सामने फरियाद करते हैं। तो भाई इस सफर में बेसब्री का मुजाहरा ना हो, नाशुक्री का मुजाहरा ना हो, और किसी गुनाह का इर्तिकाब ना हो। ये तीन चीजें बहुत अहम हैं सफर की कबूलियत के लिए। बेसब्री ना हो, नाशुक्री ना हो, और तीसरा गुनाह ना हो। हत्तुल वसा कोशिश करें कि ये उम्रे का सफर है, इसकी कबूलियत तब होगी जब इस सफर के अंदर अल्लाह की नाफरमानी ना हो। अब इशा के बाद 10 बजे या 10:30 बजे के करीब इंशाअल्लाह हम उम्रे के लिए मस्जिद में जाएंगे। ये वो वक्त है कि जब इशा के बाद आम तौर पर लोग वापस घरों की तरफ आते हैं रात के आराम के लिए, खाना खाने के लिए, तो हरम जरा खाली होता है, धक्कम तेल नहीं होती। 10 से 11 के करीब अगर उम्रा शुरू किया जाए तो अंदाजन 2-2.5 घंटे लगते हैं, बहुत पुरसकून वक्त होता है। और हमने जो इतना माल खर्च किया या आने की इतनी तकलीफ उठाई वो इसी वक्त को कैश करवाने के लिए तो उठाई है। तो उम्रे को भुगताना नहीं चाहिए कि थकी हुई हालत है जल्दी करो जी बस एहराम उतारे, नहीं ऐसा नहीं है, आए इसी मकसद के लिए। अगर तबीयत ठीक नहीं आराम कर लो, थकावट है थकावट को दूर कर लो, फ्रेश होकर तबीयत हाजिर हो, दिल पुरसकून हो, और इंसान उस वक्त अल्लाह के घर में हाजिर हो। ये अजीब आशकाना सफर है, आने से पहले तज़करा करते जुबान नहीं थकती, जब इस दर पे हाजिर होते हैं तो उसको देखते हुए आंख आंसू गिराते नहीं थकती। جی چاہتا ہے اس محبوب حقیقی کے سامنے اپنے دل کی حال کھول کر کے. تو پانچ باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے سمپل. کون سی پانچ باتیں؟ کہ جب مسجد حرام میں آپ داخل ہوں گے تو اللہ کی عظمت کو دل میں رکھتے ہوئے مسجد کی دعا پڑھ کر اعتکاف کی نیت کریں گے. نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد. اور اگر عربی میں نہیں آتی تو دل میں ویسے نیت کر لیں کہ میں جب تک اس مسجد میں ہوں نفل اعتکاف کی میں نیت کرتا ہوں. تو آپ کو عمرے کا ثواب بھی ملے گا اور جتنی دیر مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا. جب جتنی بار بھی آپ مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت ضرور کریں. دوسری بات کہ جب ہم جائیں گے بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑے گی. علماء نے لکھا ہے کہ بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑتے ہوئے انسان جو دعا کرتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں وہ دعا قبول ہوتی ہے. لہذا پہلی نظر میں وہ دعا مانگیں جس میں دین اور دنیا کی سب نعمتیں مل جائیں. اللہ سے اللہ کو مانگیں, دنیا آخرت کی عافیت مانگیں, عزتیں مانگیں. کسی نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت مجھے پہلی نظر میں کیا دعا مانگنی چاہیے؟ تو حضرت نے عجیب جواب دیا, فرمایا کہ پہلی نظر میں تم یہ دعا مانگنا کہ یا اللہ آج کے بعد میں جو بھی دعا مانگوں میری ہر دعا قبول ہو جائے. کیسی عجیب دعا کہہ دی. سبحان اللہ, واقعی ایک فقیہ کی نظر ہی اس تہ تک پہنچ سکتی ہے. پہلی نظر بھی آپ کی کیسی بلا کی تھی, ہم آج تک وہ چوٹ ہیں دل پر لیے ہوئے. یہ پہلی نظر بھی عجیب ہوتی ہے, بیت اللہ پر پہلی نظر ڈالتے ہوئے مانگنا. بہرحال اس میں فقہا نے لکھا کہ پہلی نظر میں جو دعا مانگے تو بھی مختصر سی کوئی دعا ہو جو جامع دعا ہو. لیکن اب یہ مطلب نہیں کہ جب فلک چھپک گئی تو اب دعا ختم, نہیں, دعا مانگتے رہیں. تو ہم جب جائیں گے تو مطاف میں جب پہنچیں گے تو مطاف میں پہنچنے تک نگاہیں جھکائے رکھیں گے. مطاف میں پہنچنے کے بعد پھر ہم سامنے دیکھیں گے, بیت اللہ پر نظر پڑے گی تو پھر دعا مانگیں گے اور کچھ دیر دعا مانگتے رہیں گے. یہ مالک الملک کا دربار ہے. دنیا کے بادشاہوں کے پاس جاؤ وہ دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا, پھر کہتے ہیں جی بڑی مجبوری ہے دینا چاہتا ہوں بس حالات ٹھیک نہیں ملک کے, اور اس وقت ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں اس کی بھی کمی ہے. تو دنیا کے بادشاہوں کو بجٹ کی کمی اور حالات کی ناہمواری پیش آتی ہے. اس مالک و ملک کا دربار وہ ہے مانگنے والے کو جو وہ مانگتا ہے اللہ اس کی مرضی کے مطابق عطا بھی کر دے تو اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالیں تو سمندر کے پانی میں کمی آ جاتی ہے. اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہے. تو اس لیے خوب مانگیے اللہ تعالیٰ سے, یہ اصل میں مانگنے ہی کا سفر ہے. تو اس وقت دعائیں مانگنا, یہ دعائیں پہلے سے سوچ کے رکھیں کہ ہم نے یہ مانگنا ہے یہ مانگنا ہے. بہرحال مانگتے ہوئے دل سے دعا نکلے. دعائیں اس وقت پڑھنی نہیں, دعائیں مانگنی ہیں. دعا پڑھنا اور چیز ہوتی ہے, دعا مانگنا اور چیز ہوتی ہے. تو بس آج تو مانگیں گے, दिल से दुआ निकलेगी। तीसरी बात कि फिर हम अपने एहराम का जो हमारे पास है इज्तिबा करेंगे। मर्दों के लिए ये होता है, औरतों के लिए नहीं होता। इज्तिबा क्या होता है कि अपने दाएं कंधे को नंगा कर लेना। आम हालात में तो कवर्ड रखते हैं, लेकिन जब वहां जाएंगे तो हम अपने कंधे को यूं नंगा कर लेंगे। इसको कहते हैं इज्तिबा। ये उस वक्त करना है जब भी आदमी एहराम में हो, तवाफ करना चाहे, जिस तवाफ के बाद सही हो, तो फिर उसको तवाफ के अंदर यूं इज्तिबा करना होता है हालत एहराम में। तो एतकाफ और दुआ ये पहली बात हो गई, और इज्तिबा ये दूसरी बात हो गई। फिर तीसरी चीज है, उसको कहते हैं इस्तिकबाल। इस्तिकबाल कहते हैं कि हिजरे अस्वद के सामने हाजिर होना। चुनाचे हिजरे अस्वद का निशान भी बना हुआ है, सब्ज लाइट भी एक जगह लगी हुई है। वहां पहुंचकर बिल्कुल हम हिजरे अस्वद के महाज में आ जाते हैं, और जब हिजरे अस्वद के महाज में आ जाएं तो उस वक्त जैसे हम नमाज में तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाते हैं ना, कानों की लौ तक लाते हैं, इस तरह अपने हाथ कानों की लौ तक लाकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ये कहना, इसको इस्तिकबाल कहते हैं। यानी अब आप बैतुल्लाह के वो जो हजरे अस्वद अलग कोना है उसके बिल्कुल सामने आ गए। तो एक एतकाफ, दूसरा इज्तिबा, और तीसरा इस्तिकबाल। ये इस्तिकबाल गोया अब आपके तवाफ की नियत हो गई। जब इस्तिकबाल कर लिया तो आप नियत भी कर लें कि मैं भी नवई तो अन अतूफ, मैं तवाफ की नियत कर रहा हूं। अब आप तवाफ के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। इसके बाद एक अमल है जिसको इस्तिलाम कहते हैं। इस्तिकबाल अलग सुन्नत है और इस्तिलाम अलग सुन्नत है। इस्तिलाम क्या होता है? दूर से सलाम करना। अब आप हजरे अस्वद से दूर हैं, अगर तो करीब हो तो दोनों हाथ हजरे अस्वद की साइडों पर रखें और उसको बोसा दें बगैर चटखारे के, आवाज ना निकले। तो हजरे अस्वद को इस तरह बोसा देना ये भी सुन्नत है, लेकिन हर बंदा तो करीब नहीं होता कि वो बोसा दे सके, तो शरीयत ने इसकी रियायत रखी। फरमाया कि अगर तुम दूर हो तो दूर से ही इशारा अगर कर लोगे तो तुम्हें सवाब मिल जाएगा। उसका तरीका क्या है कि आप अपने दोनों हाथों को ऐसे करें कि जैसे हजरे अस्वद के ऊपर रख रहे हैं, और दोनों हाथों को फिर बोसा दे लें। इसको इस्तिलाम कहते हैं। ये करना भी सुन्नत है। आज के दौर में छोटा बच्चा दूर होता है ना तो उसको प्यार करने के लिए यूं कर देते हैं। ये जो फ्लाइंग किस है ना, इसी का दूसरा नाम इस्तिलाम है। कि अब आप हजरे अस्वद के करीब तो नहीं है, दूर से ही फ्लाइंग किस दे रहे हैं, ये इस्तिलाम हो गया। लेकिन इस इस्तिलाम के वक्त अपने दिल की पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ रखें। इसलिए कि हदीस पाक में आता है कि हजरे अस्वद यमीनुल्लाह फिल अर्ज, जमीन में अल्लाह का दायां हाथ है। तो जैसे कोई अपने महबूब से मिलने जाए तो उसको सलाम करता है, मुसाफा करता है, गोया हाजी और उमरा करने वाला हजरे अस्वद के इस्तिलाम के जरिए मालिकुल मुल्क से मुसाफा करने की सआदत पाता है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि हजरे अस्वद इंसान के दिल की हालत को उस वक्त महफूज कर लेता है, फोटो ले लेता है। आज वीडियो कैमरे के सामने आप आते हैं ना, वो भी तो पत्थर की तरह नजर आता है ना, शीशा सा। वीडियो कैमरे के सामने आए तो शक्ल महफूज, और हजरे अस्वद के सामने आए तो दिल की हालत महफूज, कि दिल में माँ सिवा की मोहब्बत है या अल्लाह की मोहब्बत का गलबा है। और रवायत में आता है कि जिस हालत में हजरे अस्वद का इस्तलाम किया जाएगा, क्यामत के दिन उसी हालत पर मोमिन अपने रब से मिलेगा। ये डाटा निकालेंगे, ये फाइल खोलेंगे, मेरे बंदे दुनिया में आया था ना मुझसे मिलने के लिए, उस वक्त तो तेरे दिल में किसी ने घर किया हुआ था, किसी की मोहब्बत समाई हुई थी, कोई तुम्हारे दिल पे छाया हुआ था, उस वक्त तो तुम्हारा दिल बुतखाना बना हुआ था। बुतखाने में भी बुत होते हैं और कई दफा दिल में भी बुत आ जाते हैं इंसानों के, तो तुम्हारे दिल तो बुतखाना था, मेरे घर में कैसे आ गए इस शिर्क की नजासत को लेकर। तो इसलिए इस्तलाम से पहले अपने दिल को माँ सिवा से खाली कर लीजिए, हर गैर से बेतमा हो जाइए। अगर दिल में असरात हैं भी तो तौबा के जरिए उन असरात को धो लीजिए, ताकि उम्रा कबूल हो जाए। तो एक एतका, दूसरा इल्तबा, तीसरा इस्तलाम, ये चार चीजें हो गई। चार चीजों के बाद फिर पांचवी चीज होती है रमल। रमल क्या कि मर्दों को तवाफ के पहले तीन चक्रों में जरा जमकर कदम उठाने होते हैं, जैसे पहलवान उठाते हैं। ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। किताबों में लिखा है कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने तवाफ फरमाया तो कुफार देख रहे थे, तो सहाबा थके हुए भी थे, कमजोर भी थे, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार के सामने इस्लाम की अजमत को जाहिर करने के लिए उस वक्त जरा पहलवानों की तरह ये अमल किया, और मेरे मालिक को ऐसा पसंद आया कि आने वालों के लिए इसको सुन्नत बना दिया गया। तो आज भी उस सुन्नत को जो है वो अमल किया जाता है। कोई मुफ्ती साहब हों, कोई सूफी साहब हों, कोई पीर साहब हों, कोई बुजुर्ग साहब हों, हर एक को पहलवानों की तरह ये अमल करना पड़ता है। अल्लाह को पसंद जो यही है, तो ये रमल कहलाता है। अब ये रमल ऐसा है कि कई नौजवान इसमें दौड़ना शुरू कर देते हैं। नहीं, दौड़ने को रमल नहीं कहते, दौड़ने को रमल नहीं कहते, रमल कहते हैं जरा तेज कदम उठाने को। औरतों को इज्तबा और रमल का सवाब नियत से ही मिल जाता है, बिन किए ही मिल जाता है, मर्दों को यह करना पड़ता है। तो उस वक्त थोड़ा हिम्मत के साथ, चुनाचे ये रमल कैसे करना है जरा आप तवज्जो कीजिएगा। बाद लोगों को देखा कि वो तेजी के साथ दौड़ना शुरू कर देते हैं, बाद लोगों को देखा कि वो इस तरह की हरकत करते हैं, नहीं इसको भी इस्तवाल, इसको भी रमल नहीं कहते। आपने देखा होगा पहलवान जब कुश्ती करते हैं ना आपस में, एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो थोड़ा सा ऐसे झुक के ना एक दूसरे के सामने ऐसे करते हैं, इसको रमल कहते हैं, ये पहलवान पहलवान की तरह। तो आप आहिस्ता कदम उठाएं, तेज मत उठाएं, आहिस्ता, मगर ये हालत ऐसे, इसको रमल कहते हैं। इंसान अपने सीने को जरा इसे कुशादा करे और इस तरह कदम उठाए कि जैसे हिम्मत के साथ उठा रहा होता है। जब मेरे अल्लाह को ये अमल पसंद है तो हम इस अमल को भी करेंगे। होना तो ये चाहिए कि मोमिन की जिंदगी ऐसी तकवा भरी हो कि अल्लाह पूरी जिंदगी कुफार के सामने रमल की हालत में गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। तो ये पांच चीजें हुई, इनको याद कर लीजिए कि जिनको हमने आज करना है। एक, मस्जिद में दाखिल होते हुए एतकाफ की नियत। फिर उसके बाद दूसरा इज्तबा, तीसरा इस्तकबाल, चौथा इस्तलाम और पांचवा रमल। तीन चक्रों में ये रमल होता है, तीन चक्रों के बाद रमल खत्म होता है, लेकिन इज्तबा पूरे तवाफ में रहता है और बाकी नॉर्मल चल के दुआएं मांगते हुए तवाफ करना होता है। तवाफ में वुजू का होना जरूरी, अगर वुजू टूट गया तो दोबारा वुजू करना पड़ेगा, अगर थोड़े चक्कर थे तो फिर पूरा तवाफ फिर करे, और अगर चार चक्कर पूरे हो चुके थे यानी अक्सर हिस्सा मुकम्मल हो चुका था तो बाकी चक्कर वुजू करके फिर शुरू किए जा सकते हैं। तवाफ में अगर कोई आदमी कहीं रुकना चाहे मजबूरी माजूरी की वजह से, रुक भी सकता है, लेकिन फिर वहीं से तवाफ को शुरू करे। तवाफ के दौरान न किबला की तरफ सीना हो न किबला की तरफ पीठ हो, देखे भी ना बैतुल्लाह की तरफ तवाफ के दौरान। जैसे नमाज इबादत है तो नमाज के अंदर आप इधर उधर नहीं देखते, वो खुशू के खिलाफ है। इसी तरह तवाफ के दौरान इधर उधर देखते रहना ये भी खुशू के खिलाफ है। तवज्जो इल्लाह के साथ बस आप अपनी दुआएं मांगते हुए, जैसे शमा के गिर्द परवाना चक्कर लगाता है, हम भी इस शमा हकीकी के गिर्द परवाने की तरह चक्कर लगाएं। और अगर बिलफर्ज जमघटे की वजह से कोई ऐसा धक्का लगे कि भाई उधर रुख हो जाए या पीठ हो जाए, तो जितने कदम रुख करके गुजारे वो तवाफ में शामिल नहीं होंगे। तो उलमा ने लिखा कि दो सूरतें हैं, या तो पीछे हटे और दोबारा जैसे पैच जोड़ लगाते हैं वहां से फिर जोड़ लगाए, और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो फिर उस चक्कर को गिने ही ना, एक चक्कर फालतू लगाए ताकि सात चक्कर कामिल हों तवाफ के। तवाफ के दौरान दुआ मांगना चाहिए। बाद लोग तिलावत करते रहते हैं, गो तिलावत एक बहुत आला अमल है, मगर तवाफ के दौरान दुआ मांगना ज्यादा फजीलत रखता है। अपना अपना वक्त होता है ना, ये मांगने का वक्त है, अल्लाह से मांगिए। बैतुल्लाह के दरवाजे के सामने से गुजरते हुए ऐसे मांगिए जैसे एक साइल किसी शहनशाह के दरबार पर दरवाजे पे हाजिर होता है। उस खुले दर का तसव्वुर करके अल्लाह से मांगिए। दुनिया के बादशाहों के दरवाजे तो बंद हो जाते हैं ना, दफ्तर के वक्त खुलते हैं उसके बाद बंद, कोई जाना भी चाहे तो कह देते हैं जी दफ्तर का वक्त खत्म हो गया। वाह मेरे मौला, तेरा भी दरवाजा क्या है, दिन में भी खुला रात में भी खुला। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना अल्लाह को नींद आती है ना ऊंघ आती है, इसलिए कि ऐसा ना हो कि मांगने वाला आकर मांगे और परवरदिगार को ऊंघ आए तो सुनने वाले की फरियाद के सुनने में देर ना हो जाए। ये अल्लाह को ऊंघ भी नहीं आती। राबिया बसरिया अल्लाह की नेकबंदी। रात के वक्त में जब तहज्जुद के लिए उठती तो दामन फैलाकर दुआ मांगती कि अल्लाह दिन आ गई, दिन चला गया रात आ गई, बादशाहों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, तेरा दरवाजा अब भी खुला है, मैं तेरे सामने अपना दामन फैलाती हूँ। इस दरवाजे पर आकर दुनिया के बादशाह भी दामन फैलाते हैं, सब मांगते हैं। एक अंधा मांगता फिर रहा था, एक दरवाजे पर आया तो उसने सदा लगाई, कोई जवाब ही नहीं, तो गुस्से में कहने लगा कि किस बखील का दरवाजा है, कोई जवाब भी नहीं देता। तो गुजरने वाले ने कहा कि ओ अंधे, तुझे क्या पता, ये तो मस्जिद का दरवाजा है। तो कहते हैं कि जब मस्जिद के दरवाजे पर उसने सुना ना कि मैं मस्जिद के दरवाजे पर आया, तो उस अंधे फकीर ने कशकोल जमीन पर फेंक कर दौड़ दिया। कहने लगा, अगर अल्लाह के दरवाजे पे पहुंच गया हूँ, अब किसी और दरवाजे पे जाते मुझे शर्म आती है। हमसे तो अंधा फकीर ही अच्छा कि जिसने इस बात को समझ लिया कि अब मैं अल्लाह के दरवाजे पे पहुंच गया हूँ। आज हम भी अल्लाह के दरवाजे पर पहुंचे हैं। इस दरवाजे पर पहुंचकर हम मांगे जो मांगते हैं, मांगने वाले का दामन छोटा होता है, देने वाले की देन हमेशा बड़ी होती है। तो पांच बातों का हमने ख्याल रखना है। एक, एतकाफ की दियत। दूसरा, इज्तवा करना है। तीसरा, इस्तकबाल। चौथा, इस्तलाम। और पांचवा, रमल। फिर तवाफ करना है, और तवाफ के दौरान फिर दुआएं मांगनी है मौका की मुनासबत से, जो जी में आए हर चीज अल्लाह से मांगे। अब इस मांगते हुए भी पांच बातों का ख्याल रखना। जब दुआएं मांगनी है तो दुआ मांगते हुए पांच बातों का ख्याल रखना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में बैतुल्ला के बारे में मुख्तलिफ बातों का इशारा फरमाया। उनमें से एक बात तो ये कि तुम जब यहाँ आते हो, लियशहदू मनाफिया लहुम, तो इस आयत से सामने आता है कि यहाँ आने से दुनिया के मुनाफे भी मिलते हैं। तो जब कुरान में गवाही मिल गई कि यहाँ आने से दुनिया के मुनाफे मिलते हैं, तो भाई मांगना चाहिए ना, फिर जी भर के मांगना चाहिए। अच्छा, बाद लोगों को देखा कि वो कहते हैं जी हम अल्लाह से, अल्लाह को मांगते हैं, दुनिया नहीं मांगते। ठीक है भाई, आप बड़े आला हाल वाले बुजुर्ग हैं कि आपको दुनिया की इतनी भी परवाह नहीं, और हम तो कमजोर हैं, हम तो मोहताज हैं, आखिरत की नेमतों के भी मोहताज और दुनिया की नेमतों के भी मोहताज। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे जूते का तस्मा टूट जाए, तुम तस्मा भी अपने परवरदिगार से मांगो। हम तो उस कैटेगरी के बंदे हैं, मांगेंगे, हर चीज मांगेंगे, आप ही से मांगेंगे। मौला, जब हम बंदे ठहरे और आप हमारे रब हैं, तो हम सब कुछ आपसे मांगेंगे। छोटी चीज, बड़ी चीज, सब आपसे मांगना है। कोई ऐसा वक्त नहीं आ सकता कि जब हमारा दिल नेमतों से भर जाए। नहीं, बंदगी इसी को कहते हैं। हम मांगेंगे और हर चीज मांगेंगे और खूब डट के मांगेंगे। ये बुजुर्गों का बड़ा औकात हाल रहा है कि उन्होंने कहा कि बस अल्लाह से अल्लाह को मांगो। इब्ने फारिज रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर शेर है कि जब मौत का वक्त करीब आया तो उनको जन्नत दिखाई गई, उन्होंने जन्नत से आंख हटा ली और शेर कहा, इन कान मंजिलती फिल हुब इंदकुम मा कद रईत व फकद दैया तो अय्यामी, कि अगर अल्लाह तेरी मोहब्बत में मेरे सारी जिंदगी की मेहनतों का सिर्फ यही बाग बगीचा ही जो है इनाम है, मैंने क्या पाया। मौला, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी ही जाया कर दी, मुझे तो आप चाहिए। तो ये एक साहिब हाल बुजुर्ग की बात है। हमें तो अल्लाह भी चाहिए और उसके साथ जन्नत की नेमतें भी चाहिए, हमें तो सब चाहिए। मसला तो ये है कि हम अपने बारे में ये सोचें कि हमें सब कुछ चाहिए। ये है असल अबदियत। ये नहीं है कि हमें जन्नत नहीं चाहिए, हमें अल्लाह चाहिए। नहीं, अल्लाह भी चाहिए, जन्नत भी चाहिए, दुनिया की नेमतें भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब जरा तवज्जो फरमाइए, बुखारी शरीफ की रिवायत है, ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے زمینیں بھی عطا کی، باغات بھی عطا کیے، اولاد سے بھی نوازا، بیویوں سے بھی نوازا، دنیا کی تمام نعمتوں سے نوازا، یوں سمجھیں کہ جیسے وقت کا سیٹھ ہوتا ہے نا کوئی، ایسے سیٹھ بنا دیا، اتنی نعمتوں سے نوازا۔ ایک وقت آیا کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نہانے کے لیے ایک تالاب پر گئے، نہر پر، تالاب پر۔ اب چونکہ وہاں تو کوئی قریب نہیں تھا، لہذا انہوں نے اپنے کپڑے اتارے اور تالاب میں نہانا شروع کر دیا۔ جب تالاب میں نہا رہے تھے تو اللہ رب العزت کی قدرت سے چڑیاں آئیں جو سونے کی بنی ہوئی تھی، اور آ کر قریب قریب بیٹھنے لگ گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب دیکھا تو چڑیاں پکڑنے لگ گئے، جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، نہا رہے تھے، اب اسی دوران چڑیاں آگئے، پکڑ رہے ہیں، ایک چڑیا کے پیچھے، پھر دوسری کے پیچھے، پھر تیسری کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اتنا کچھ دیا اور اتنے کچھ کے بعد آپ پھر ان کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ، اتنا کچھ پا لینے کے بعد ابھی بھی میں تیری نعمتوں کا محتاج ہوں۔ بس ہم یہی بات سامنے رکھیں کہ اتنا کچھ حاصل کر لینے کے بعد بھی اللہ میں تیری نعمتوں کا محتاج ہوں، ہم اللہ کی نعمتوں کے پھر بھی محتاج ہیں۔ تو ایک پانچ نکتے ہیں مانگنے کے لیے جن کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ دنیا کی ہر نعمت، جو پریشانی ہے دنیا میں، گھر نہیں اللہ سے گھر مانگے، کاروبار اچھا نہیں اچھا کاروبار مانگے، دنیا کے اندر کوئی اور پریشانی ہے، بیماری ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ سے مانگے، کیونکہ یہ منافع ملنے کا مقام ہے، اور منافع سے مفسرین نے یہاں مراد دنیا کا فائدہ لیا ہے، لہذا ہم بھی دنیا کی ہر نعمت مانگیں۔ تو ایک پوائنٹ مانگتے ہوئے یہ ذہن میں رہے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ دوسری بات، اللہ رب العزت اپنے گھر کے بارے میں فرماتے ہیں، مبارکم، یہ برکت والا گھر ہے، تو برکت والے گھر سے ہم برکتیں اللہ کی مانگیں، کہ تیرے برکت والے گھر میں حاضر ہیں اور تیری برکتوں کے طلبگار ہیں۔ صحت میں برکت، عمر میں برکت، رزق میں برکت، عزت میں برکت، دین میں برکت، اولاد میں برکت، ہر نعمت میں برکت اللہ سے مانگے۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بندے کی ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں، اس کو محتاج نہیں رہنے دیتے کسی چیز اور کا، غنی کر دیتے ہیں۔ تو منافع بھی مانگنے ہیں اور برکتیں بھی مانگنی ہیں۔ یہ دو باتیں کلیئر ہو گئیں اچھی طرح کہ دعائیں مانگنی ہیں تو دعا مانگتے ہوئے پانچ چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کون سی؟ منافع، اللہ سے ہم نے دنیا کی ضرورتیں اور ان کے منافع مانگنے ہیں، اور دوسری چیز اللہ رب العزت سے ہم نے برکتیں مانگنی ہیں۔ آج صحت تو ہے، برکت نہیں، اس کا نتیجہ کیا کہ 25 سال کا نوجوان بھی بوڑھے کی طرح تھکا ہوا، کہتے ہیں جی بیٹھا ہوا اٹھتا ہوں آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے، یہ 25 سال کا نوجوان، اور جو 30, 35, 40 میں چلے گئے، کسی کے گھٹنوں میں دردیں، کسی کے کمر میں درد۔ ہماری صحتیں ایسی ہیں نا، برکت نہیں ہے آج۔ تو
अल्लाह से बरकतें मांगनी है। कुव्वत हाफजा में बरकत नहीं, जरा सी कोई चीज याद करते हैं थोड़ी देर में भूल जाती है, जहन से निकल जाती है। तो मुनाफे मांगने हैं, दूसरा बरकत मांगनी है, तीसरा अल्लाह ताला कुरान मजीद में इस घर के बारे में फरमाते हैं मुबारकम व हुदल्लिल आलमीन, और ये जहानों की हिदायत का मरकज है। तो हमने यहां अल्लाह ताला से हिदायत मांगनी है कि जब पूरी कायनात के लिए हिदायत का मरकज ये जगह है, ये मरकज तजल्लियात अल्लाह, फिर आपने यहाँ पहुंचा दिया, अब बकिया जिंदगी हिदायत के ऊपर हमें जमाए रखी। मुनाफे मांगने हैं, बरकत मांगनी है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत से हिदायत मांगनी है। फिर अल्लाह ताला इस घर के बारे में कुरान मजीद में फरमाते हैं वमन दखलहू काना आमिना, जो इस घर में दाखिल हो गया वो अमन में आ गया। अमन से क्या मुराद? अमन से दो बातें मुराद, एक तो ये कि अल्लाह की नाराजगी से अमन में आ गया। भाई घर में तो उसी को बुलाते हैं ना जिसको अपना समझते हैं, ये दुनिया का दस्तूर है। जब किसी से कुछ नाराजगी होती है ना तो उसको घर आने से मना कर दिया जाता है। चुनाचे हमने देखा बाप बेटे को मना कर देता है, भाई भाई को मना कर देता है, रिश्तेदार को मना कर दिया जाता है, भाई आज के बाद घर ना आया करो हमारे। हत्ता के खाविंद अपनी बीवी को मना कर देता है, मेके चली जाओ आज के बाद मेरे घर में ना आओ। तो नाराजगी जब होती है तो घर में आने से मना कर दिया जाता है। घर में किसको बुलाते हैं? जिसको अपना समझते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अपने घर बुला लिया, ये इस बात की दलील कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपना समझते हैं, अल्लाह का देने का इरादा है। बच्चे को बुलाते हैं ना कुछ देने के लिए, अल्लाह ताला ने भी अपने बंदों को बुला लिया, ओ भाई तुम्हें भी दुनिया की कैंडियां दे दें, तुम ये लॉलीपॉप मांगते हो ना, चूसते फिरते हो, आ जाओ तुम्हें दे देते हैं लॉलीपॉप, चूसते रहना। दुनिया की भी नेमतें दे देंगे, आखरत की भी नेमतें दे देंगे। तो हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत से अमन मांगना है, ये अमन क्या होगा? अल्लाह की नाराजगी से अमन, जहन्नम की आग से अमन, शैतान के हमलों से अमन, और नफ्स की मकारियों से अमन, हर चीज से अमन, और कुफर के खौफ से अमन। आज तो वक्त ही ऐसा है, पूरी दुनिया में जहां चले जाओ कुफर दनदना रहा है। मुसलमानों के लिए इस्लाम पर जमे रहना मुश्किल होता जा रहा है। तो हम अल्लाह से अमन मांगे, तो ये अमन का नुक्ता जहन में रख के जब आप मांगेंगे अल्लाह ताला हर खतरे से अमन अता फरमाएंगे, दिल को पुरसकून फरमा देंगे। तो चार बातें हो गई। सबसे पहली बात मुनाफे, दूसरी बात बरकत, तीसरी बात हिदायत, चौथी बात अमन, और पांचवी नेमत जो हमने मांगनी है, अल्लाह फरमाते हैं व अतिमुल हज वल उमरा तलिल्ला, हज और उमरा अल्लाह के लिए करो, यानी अल्लाह की रजा के लिए करो, अल्लाह को राजी करने के लिए। तो मकसूद तो उमरे का यही है ना, तो पांचवी नेमत अल्लाह से ये मांगे कि अल्लाह अब हमने उमरा किया, कोई गफलत रह गई, कोताही हो गई, सुस्ती हो गई, जैसे करना चाहिए था ना कर सके, मगर अब ये जैसा अमल भी है इसको कबूल करके हमें अपनी रजा अता फरमा दीजिए। اللہ سے اس کی رضا مانگنی ہے کہ ہم نے آپ ہی کے لیے یہ کیا ہے، دنیا کے لیے نہیں کیا، آپ کو منانے کے لیے، آپ مان جائیے، آپ راضی ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتے جو اللہ کے شایان شان ہو۔ امام ربانی مجدل ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، میں اب بات مکمل کر رہا ہوں، انہوں نے لکھا ہے کہ ہم جتنی بھی یکسوئی سے عبادت کر لیں، کبھی بھی وہ عبادت اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ شان اتنی اونچی ہے، ہم جو زور لگا لیں یہ عبادت نیچے رہ جاتی ہے، اللہ کی شان اس سے بھی بلند، اس سے بھی بلند، اس سے بھی بلند ہے۔ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے فرمایا، ما عبدنا کا حق کا عبادت، اللہ جیسی تیری عبادت کا حق تھا وہ حق ادا ہم نہیں کر سکے، تو پھر ہماری عبادتوں کا کیا حال ہے؟ لیکن پھر بھی اللہ رب العزت بالناس لرؤوف الرحیم، وہ بندوں کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے، وہ مہربانی فرما کر قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ پانچ دعائیں مانگنی ہیں۔ تو پانچ باتوں کا خیال طواف کرتے ہوئے اور پانچ نقطوں کا خیال دعائیں مانگتے ہوئے، اگر اس طرح آپ نے دعائیں مانگی تو امید ہے انشاءاللہ کہ یہ عمرہ آپ کا آپ کے لیے واقعی اللہ کی رضا کا سبب بن جائے گا، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں یکسوئی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ بہترین عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کم ہے، دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الالوہاب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے مالک، ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اے رب کریم، ہمیں صحیح خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اس عمرے کے سفر کو قبول فرما۔ میرے مولا، بیت اللہ میں جا کر جو دعائیں ہمارے لیے بہتر ہیں وہی ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، جھولیوں کو بھرپور فرما، خالی دامن آئے ہیں، اللہ ان دامن کو بھرپور فرما۔ میرے مولا، اپنی رضا عطا فرما، جو ایام زندگی کے یہاں ٹھہرنے کے آپ نے لکھے ہیں، اللہ ان کو پورے آداب کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔
دس بجے بابے عبدالعزیز کے اندر سب جمع ہو جائیں۔ بابے عبدالعزیز سے مسجد کے اندر جب داخل ہوں گے تو سیڑھیاں اترتے ہی رائٹ سائڈ پہ برامدے میں وہیں بیٹھ جائیں، انشاءاللہ حضرت عون بکاتم وہیں تشریف لے آئیں گے، تو پھر انشاءاللہ حضرت جی کی معیت میں عمرے کے لیے انشاءاللہ چلیں، انشاءاللہ۔